तो आज श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद त्रयोदशी। शुरुआत में हम एक भजन गाएंगे। आपके पास जो पुस्तिका है उसमें पेज क्रमांक 45, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला।
निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ा, हेनो निताय बिन भाई राधा कृष्ण पाई ते नाय, दृढ़ करे धर निताय पाए, से संबंध नहीं जाय वृथ जन्म गेलो तार, से पशु बड़ दुराचार, निताय ना बोलिले मुखे मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेतार, अहंकार मत होया निताय पद पसरिया, असत्य सत्य कोरी मानी, निताएरा करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे, घर निताए चरण दुखानी, निताए र चरण सत्य ताहर सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आशा, नरोतम बड़ दुखी निताय मोरे करो सुखी, राखो रंग चरण पाश, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत जुड़ाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है तो आज हम चर्चा करेंगे नित्यानंद प्रभु के बारे में। इस सुंदर भजन में नरोत्तम दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु के कृपा का वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु कौन है और उनके शरण में जाने से हमें क्या लाभ होगा। नरोत्तम दास ठाकुर किसी अन्य भजन में भी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और बलराम निताय के रूप में आए हैं। निताय अर्थात नित्यानंद, दोनों कृष्ण और बलराम कलयुग में 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए इस युग के पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता नवद्वीप में एक बार अपने घर में जो कृष्ण बलराम के विग्रह थे उनकी पूजा कर रही थी, नैवेद्य रखा हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में बदल गए हैं और आपस में वो झगड़ रहे हैं जैसे कि बच्चे झगड़ते हैं नैवेद्य के लिए। और रात को यही सपना जब आया और अगले दिन सुबह को उठे तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए भोजन के लिए बुलाया और जब दोनों को वो भोजन खिला रही थी तो उनके सामने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्ण और बलराम दिखाई पड़े। ये दृश्य को देखकर वो बेहोश हो पड़े और उस समय थोड़े क्षण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये दृश्य दिखाया कि वो स्वयं कृष्ण हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आई हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने इस गुप्त अवतार को कई जगह प्रदर्शित किया हालांकि शास्त्रों में ये स्पष्ट उन लोगों के लिए नहीं दिखाई पड़ता जिनकी श्रद्धा अल्प है। जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुके हैं, जो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए पात्र हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य सहायक हैं इस कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान होते हुए भी कृष्ण अवतार से अधिक करुणामयी हैं, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के बारे में कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। 500 वर्ष पूर्व जब नवद्वीप में जो आज बंगाल में है गौर निताय अर्थात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के संग में हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू कर रहे थे, तो हजारों हजारों के लोगों को, हजार की संख्या में उन्होंने लोगों का उद्धार किया। उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा, आसान नहीं था, हर प्रकार के दुराचारी पापी दुष्ट लोगों का सामना करना पड़ा, फिर भी सबका उद्धार उन्होंने कर दिया, क्योंकि अवतार लेने का कारण ही यह था, पतित पावन हेतु तव अवतार। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि पतितों का पावन करने के लिए ही तो आप यहां अवतार लिए हैं। उस समय वहां पर नवद्वीप में जगन्नाथ और माधव ऐसे दो बड़े दुराचारी और पापी व्यक्ति थे, जिनको जगाई और मधाई से के नाम से लोग जानते थे। इतने बड़े पापी, इतने बड़े दुष्ट वो समय थे, सबको हैरान कर रखा था उन्होंने। जब वो अपने दुष्ट कार्य कर रहे थे, उधर दूसरी जगह चैतन्य महाप्रभु ने अपने दो पार्षदों को बुलाया, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, और उन्होंने कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करह प्रकाश। हे सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सब जगह जाके मेरे आज्ञा का प्रकाश करना। और मेरी आज्ञा क्या है? प्रति 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 घरे घरे गिए कौरो कृष्ण भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कौरो कृष्ण शिक्षा। ये जाके तुम भिक्षा मांगो भगवान कृष्ण के लिए, कि तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो, कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार करो, और हर रोज आकर मुझे रिपोर्ट देना कि आज तुम्हारा प्रचार का कार्य कैसे हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आदेश का या तुम्हारे निवेदन का पालन नहीं करते हैं, तो मेरे लिए उनका मेरा सुदर्शन चक्र उनके लिए तैयार है। तो ये सुनकर सब वैष्णव जो वहां उपस्थित थे हंसने लगे, आखिर भगवान का आदेश को कौन ठुकरा सकता है। तो सारे वैष्णव वहां समझ गए कि आज से सारे पृथ्वी के पापी लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे से अभी सभी लोग वैष्णव बनने वाले हैं, सबका उद्धार होने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा, और घर घर में जाकर, गली गली में जाकर वो उसी उपदेश का वर्णन करते जो कि महाप्रभु ने उन्होंने दिया था। अलग अलग तरह के लोग वहां आते, और उनमें से जो पुण्य लोग थे, जो भगवान की ओर आस्था रखते थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की जो आज्ञा थी, उनके निवेदन था, वो स्वीकार किया और कहा कि जैसे आपने हमें बतलाया है, वैसे ही हम कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्री कृष्ण को हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो दुष्ट थे, नास्तिक थे, पापी थे, तो उन्होंने कहा, अरे ये दो नित्यानंद और हरिदास न जाने कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, इसलिए पागल हो गए हैं। वहां पे चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास ठाकुर। नित्य नियम से हर रात चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त वहां कीर्तन किया करते थे, और ये कीर्तन रात भर चलता था श्रीवास आंगन में। दिन में गली गली में जाकर कीर्तन करते थे, और रात में श्रीवास आंगन में, अर्थात 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन चलता था। प्रसाद क्या और सोना क्या, उन्हें मालूम ही नहीं था। एक बार कीर्तन आरंभ हो जाता था तो उनको थकावट नहीं महसूस होती थी, भूख प्यास नींद कुछ नहीं लगती थी, कीर्तन बस करते रहते थे। तो कई लोग वहां नहीं आ पाते थे, उनको वहां आना मना था, क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सख्त आदेश दिया था कि इनको बिल्कुल यहां आना मना है। तो वो जो लोग थे बड़ी निंदा करते थे भक्तों की, वो कहा करते थे कि ये लोग शायद भूखे हैं, इसलिए रात भर कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण आके उनका भूख मिटाए। और वास्तव में ये लोग तो बिल्कुल पागल ही हो गए हैं, और इनका जो नेता है वो है निमाई पंडित। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से उस समय जाने जाते थे, और ये निमाई पंडित की वजह से इतने सज्जन और भद्र लोग हमारे नवद्वीप के शहर में भी उसके जैसे पागल हो गए। अभी इसे क्या किया जाए, ये तो हमारे सारे गांव के लिए खतरा है। थोड़े लोग बोलते थे कि चलो मारो मारो, इनको पुलिस के हवाले कर दो। थोड़े लोग कहते थे कि शायद ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं, इसलिए प्रचार का नाम लेकर घर घर में जाके देखते हैं कि घर में क्या है, कौन रहते हैं, ताकि जब रात को चोरी करने आए तो उन्हें ज्ञान पड़े, ज्ञान लग जाए, हो जाए कि कहां कैसे चोरी करना है। तो इस तरह से बार बार उनको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता था। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इन सब चीजों को सुनते थे तो हंसते थे, कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश तो सफल होना ही है, इसको कौन रोक सकता है। भगवान ने इच्छा की है कि इन सब का उद्धार होगा तो होना ही है। और एक बार जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास जा रहे थे तो उन्होंने ये जगाई और मधाई को देखा। ये जगाई और मधाई वास्तव में एक बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे उन्होंने, लेकिन हालांकि उनका जन्म इतना अच्छा था, कुटुंब में कोई दोष नहीं था, फिर भी ये बड़े दुराचारी निकले। ऐसा कोई पाप नहीं था जो कि इन्होंने नहीं किया था। डाका डालना, लूटना, बलात्कार करना, लोगों के घर को जला डालना, हमेशा मांसाहार करते थे, शराब पीकर उन्मत्त रहते थे, दिन भर मांस खाते थे, शराब पीते थे, गाय की हत्या करते थे, लोगों की हत्या करते थे, ब्राह्मणों की हत्या भी करते थे, और कभी कभी नशे के प्रभाव में आकर एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, गंदे गंदे गालियां, और कभी कभी हल्ला कर देते थे शहर में। सारे शहर के लोग बड़े घबराते थे ये जगाई और मधाई से। शरीर के बड़े हृष्ट पुष्ट हट्टे खट्टे थे, सभी लोग उनका सामना करने के लिए घबराते थे, तो इसलिए सभी लोग दूर ही रहते थे, और जब जगाई मधाई दिखाई पड़ते थे तो सब लोग अपने अपने घरों में जाके छुप जाते थे। इतने खतरनाक थे ये जगाई मधाई, दिन रात पीकर इधर उधर दंगा करते थे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है, वो कहते हैं कि केवल एक पाप इन्होंने नहीं किया था। वो कौन सा है पता है आपको? वैष्णव अपराध। उन्होंने केवल वैष्णवों का अपराध नहीं किया था, वास्तव में ये अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, सबसे बड़ा पाप ये होता है। बताया जाता है कि जिस धार्मिक स्थल में वैष्णवों का अपराध होता है, अपराध करने वाला तो नष्ट होता ही है, लेकिन वो स्थान भी नष्ट हो जाता है। और अगर सन्यासियों के समाज में अगर वैष्णव अपराध हो तो वो जो स्थान है, वो जो संघ है, शराबियों के संघ से भी बुरा है। इसलिए वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक होता है। जो भी इस भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि भक्तों के बीच में आकर बड़े प्रेम से, नम्रता से रहें, किसी का दिल न दुखाएं, सबके साथ बड़े सहकारी भाव से यहां कार्य करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। तो ये जगाई मधाई इन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था, इसका कारण क्या है कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो हमेशा शराबियों के संग में रहते थे, दिन रात शराबियों के संग में, और वैष्णवों का क्या काम वहां जाकर शराब के अड्डे में रहना। तो वैष्णवों को कभी देखा ही नहीं था, कभी संग ही नहीं किया था, तो अपराध कैसे करेंगे? तो ये भी भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, एक दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम सबसे बड़े पाप से तो बचा दिया। तो इस तरह से ये एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के सामने आए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो जाकर चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वचन बोलते थे, ठीक वही शब्द श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन में गाए हैं। वो कृपा करके फिर से ये भजन की पुस्तिकाएं आप वितरित कीजिएगा, और पेज पन्ना है 36वां। तो ये सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा कितनी अपार है। और नित्यानंद प्रभु जब बाहर नदिया में घूमते थे, फिरते थे, तो किस तरह से वो लोगों को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, उनका उद्धार करते थे। बड़ा सुंदर भजन है। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु राज्ञाए भाई मागी ए भिक्षा, प्रभु राज्ञाए भाई मागी ए भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, कृष्ण रसंसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्ण रसंसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, श्रद्धावान जन है,
श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बोल रहे थे। और जब ये जगाय और मधाय के पास में आए, वो तो बिल्कुल नशे के प्रभाव में थे। जमीन क्या है, आकाश क्या है, कुछ पता नहीं था। तो जब इनकी आवाज सुनी तो घूम के देखा, लाल लाल आंखों से हाथ ऊपर किए और उनके पीछे दौड़ने लगे, यहां आओ आज तुम्हें सबक सिखाते हैं। सन्यासी वेश में उनको देखा तो और क्रोध बढ़ गया उनको, और उनका पीछा करने लगे। शरीर के बड़े मोटे थे खा पीकर, तो इतनी तेजी से दौड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी तूफान की तरह चल रहे थे। और जब इनका यह भाव देखा तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अब इस स्थान में रहना कुछ उचित हमारे लिए शायद नहीं है। जिस भावना से आक्रमण की दृष्टि से ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमें यहां से दूर जाना ही अच्छा होगा। ये तो इनकी लीला है। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, बल के भंडार हैं, बल के उगम स्थान हैं। वो भला किस चीज के से भयभीत हो सकते हैं। तो दोनों भागने लगे, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, और भागते भागते आपस में बातचीत करने लगे। नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, अरे हरिदास, अब लगता है कि शायद ये आज हमारा आखिरी दिन होगा। जिस तरह से ये हमारी पीछा कर रहे हैं, लगता है कि मृत्यु बहुत करीब आ गई है, आपकी क्या राय है? तो हरिदास ठाकुर भी भागते भागते बोले, जो आप बोल रहे हो वो सही लगता है, अभी शायद ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को प्रचार करने गए और मैं तुम्हें ले गया वहां पे, तो ये इसका परिणाम है। और वैसे भी तुम इतने नटखट बालक हो नित्यानंद, इसलिए ये सब हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, हरिदास जरा गौर से सोच के बोलो, नटखट मैं हूं या हमारे प्रभु वो चैतन्य है? किनके आदेश के अनुसार हम यहां आए हैं? हैं तो ब्राह्मण, लेकिन आदेश देते हैं राजा के बराबर। जाओ प्रचार करो, कृष्ण नाम का उपदेश करो सबको। अभी हमारी तो अजीब मुसीबत है, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो बड़ा पाप लगेगा, और आदेश पालन करते हैं तो ये अपरिस्थिति हो जाती है। ये जगह मधा जैसे लोग हमारा पीछा करते हैं तो क्या करें? तो चले और भागते चले। तो इस तरह से आपस में हंसी मजाक में झगड़ा करते करते हुए वो भागते जा रहे थे। पीछे से जगाए मदाए तेजी से दौड़े आ रहे थे, अरे रोको रोको, क्योंकि वो मारना चाहते थे उनको। दौड़ते 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 ऐसे किसी न किसी तरह से वो दूर भाग गए। लेकिन जब लोगों ने देखा, नवद्वीप के निवासियों ने, कि क्या चल रहा है, ये क्या अद्भुत दृश्य है, नित्यानंद और हरिदास भागे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जगाए और मधाई। और जो उनमें से पुण्यवान लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि अरे आज नित्यानंद प्रभु और हरिदास को बचाइए। अन्य पुण्यवान लोग बड़ा शोक करने लगे कि हाय हाय, हमने तो इनको चेतावनी दी थी कि इन पापी लोगों के पास अब जाना मत, इनके पास अवश्य अब जाओगे तो खतरा है, जान का खतरा है। उस समय नित्यानंद प्रभु केवल हंसे थे। नित्यानंद प्रभु जब लोगों ने उनको चेतावनी दी थी तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में इन दोनों का उद्धार तो करना ही है। मेरा नाम है नित्यानंद कृष्ण चैतन्य का सेवक, और मेरा नाम का फायदा क्या है, मेरी उपाधि चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनकर इसका फायदा क्या है अगर ऐसे लोगों का उद्धार न हो जाए। अभी तक हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए लोग उनको पहचानते नहीं हैं, सोचते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन जब जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार हो जाएगा तब मेरे प्रभु का गौरव सब जगह दुनिया में फैलेगा, इसलिए इन दोनों का उद्धार तो हमें करना ही करना है। चैतन्य महाप्रभु ने अवतार इस कारण लिया है। तो ये सोचकर नित्यानंद प्रभु हंस दिए थे, और अभी वो सारे ब्राह्मण अपने आप में सोच रहे थे कि हमने उस समय चेतावनी दी थी इन दोनों को, ये जानते नहीं थे कि जगाई और मधाई कितने खतरनाक हैं। और जो पापी लोग थे, दुष्ट लोग थे, नास्तिक लोग थे, वो सोचने लगे अब अच्छा हुआ, अभी भगवान नारायण इन दोनों ढोंगी सन्यासियों को सबक सिखाएंगे। तो ऐसे अलग अलग लोगों की धारणा थी। तो खैर, भागते भागते नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आ पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर। उस समय अकस्मात जगाई मधाई को दिखाई नहीं पड़ा कि हम कहां जा रहे हैं, क्या है, हम जिनका पीछा कर रहे थे वो कहां गए। रुक गए, वहां पर रुक कर बिल्कुल भ्रमित हो गए, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, मुक्का प्रहार करने लगे एक दूसरे के। जब दूसरों के ऊपर प्रहार नहीं करते तो एक दूसरे के ऊपर करते, जब दूसरों को गालियां नहीं देते तो एक दूसरे को देते। थे तो भाई, लेकिन नशा ये ऐसी वस्तु है, देखिए क्या दशा बना देती है आदमी की। तो उनको पता भी नहीं चलता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के कमरे में आके जल्दी से आए घबराए हुए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अरे नित्यानंद हरिदास, ये क्या अवस्था है तुम दोनों की, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम तो जान बचाकर आए हैं आपके पास, अभी ऐसा हुआ कि ये दो आदमी, भयंकर आदमी है जगाई मधाई, हमारा पीछा कर रहे थे, प्राय हमारी मृत्यु होनी थी, आपकी कृपा से ही हम बच गए। अच्छा, ये कौन है ये जगाई मधाई, क्यों ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद ऐसे हैं, पापी हैं। तो अन्य भक्त जो वहां थे वो जगाई और मधाई का वर्णन करने लगे कि रोज इनके दंगे चलते रहते हैं, कुछ न कुछ, किसी घर को जलाना, किसी स्त्री का अपहरण करके ले जाना, गाय की हत्या करना, लोगों को घर में डकैती करना, इनके लिए कोई ऐसा पाप नहीं जो नहीं किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहां आए तो सही, मैं उनकी गर्दन ही काट दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, केवल बोलते हो आप ऐसे, लेकिन जब तक ये दो यहां पर है मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मेरी जान बहुत प्रिय है मेरे लिए, जान पे खतरा लगा के जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जब तक आप इनको गोविंद का नाम देकर इनका उद्धार नहीं करेंगे हम नहीं जाने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु ने हंस कर कहा, अरे नित्यानंद, जगाई और मधाई ने तुम्हारा दर्शन किया है, दर्शन मात्र से ही उनका उद्धार तो हो गया है, और वैसे भी तुम्हारी हृदय में जब इच्छा है कि इनका उद्धार हो तो वो तो हो ही जाना है, तुम्हारी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होती है, तो आज ना आज एक न एक दिन तो होने ही है। मैं इन दोनों को कृष्ण का शुद्ध भक्त बना कर ही रहूंगा। तो यह सुनकर सारे वैष्णवों ने हरी हरी कहना आरंभ किया। उन्होंने सोचा कि आज ये सबसे जो पतित दो पतित लोग, सबसे बड़े दुराचारी लोग कृष्ण भक्त बनने वाले हैं, ये निश्चित है। क्योंकि महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने यह बात ठान ली है। जब अकेले में अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर थे तो हरिदास ठाकुर अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करने लगे अद्वैत आचार्य के पास, कहने लगे, अरे ये नित्यानंद, मैं इनके संग में जाता हूं, इतना नटखट है, जहां भी जाता है हल्ला करता है और मुझे कष्ट में डाल देता है। अभी मैं कहीं होता हूं वो कहीं और चले जाता है। कई बार ऐसे हुआ कि गंगा जी में कूद कर वहां जो मगरमच्छ होते हैं उनसे वो युद्ध करता है, और मैं जोर जोर से बोलता हूं, अरे मगरमच्छ है, खा जाएगा तुम्हें, नहीं, आलिंगन करते हुए वो उनके साथ में खेलता है। और जब गंगा जी से बाहर आ जाता है तो उसको उसके मित्रों को देखता है, उनको मारने के लिए बाहर आता है, और वो मित्र घबरा के भाग जाते हैं, और फिर वो बच्चों के माता पिता डंडा लेकर आते हैं और मुझे पीट देते हैं, क्योंकि नित्यानंद भाग जाता है वहां से। और नित्यानंद क्या करता है, जाकर लोगों के जो गाय हैं ग्वालों के, उनका दोहन करके दूध पी जाता है, कभी कभी घी मक्खन चोरी कर लेता है, कभी ऐसे हरकतें कर देता है, कभी बैल के ऊपर बैठकर घोषणा करता है कि मैं महादेव हूं, कभी रास्ते में कोई भी कन्या मिल जाए तो जाकर कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। और हम हैं दो सन्यासी और ऐसे कर रहे हैं तो कई बार लोग आके मेरी पिटाई करते हैं, कई बार मुझे लोगों के पैर पड़ने पड़ते हैं उसकी ओर से, वो तो गायब हो जाते हैं और डंडा लेने के लिए मैं रह जाता हूं। अब ये नटखट बालक के क्या करना है। तो ऐसे जब हरिदास ठाकुर बोल रहे थे तो उस समय अद्वैत आचार्य हंसे और बोलने लगे कि नित्यानंद प्रभु की बात तुम नहीं जानते, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा जब होती है किसी के ऊपर तो उसका उद्धार होना ही निश्चित है। हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे उद्धार की बात दूर है, मब जब मैं उसे घबराने की कोशिश करता हूं कि मैं अद्वैत आचार्य को बोल दूंगा, महाप्रभु को बोल दूंगा, तो कहता मैं किसी से घबराता नहीं हूं, जाके अद्वैत आचार्य से बोल दो, जाके मेरे महाप्रभु से भी बोल दो, मैं किसी से नहीं घबराता। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य हंसने लगे और कहने लगे कि ये महाप्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों मिलकर सारे पृथ्वी का उद्धार करने वाले हैं। और फिर अचानक अद्वैत आचार्य गंभीर हो गए और ये सत्य है, इसमें कोई संदेह किसी का नहीं होना चाहिए कि ये दो जो आए हैं महाप्रभु और नित्यानंद हरिनाम देकर कृष्ण प्रेम सबको देने वाले हैं। तो ये बात सुनकर हरिदास ठाकुर, ये भी एक लीला थी, हरिदास ठाकुर को ये सब तो मालूम था, लेकिन इनके बीच में ऐसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से थोड़े दिन बीत गए। उधर जगाए मधाई हर जगह जाके अपना दंगा जारी रख रहे थे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु कहीं से आ रहे थे तो अचानक उनके रास्ते में जगाई और मधाई मिल गए और उन्होंने कहा, हे तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मेरा नाम अवधूत है। अवधूत मतलब जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता, साधु, लेकिन समाज के नियम से उसे कुछ लेना देना नहीं है, कैसे भी कपड़े पहनेगा, कैसे भी बात करेगा, कुछ भी करेगा। जो प्रामाणिक अवधूत होते हैं पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, इसलिए उनकी नकल हम नहीं कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु का और एक नाम है अवधूत। तो उस समय वो उन्होंने अपनी लीलाओं का वर्णन शुरू कर दिया तो जगाए मधाई को आया बड़ा क्रोध। मधाई ने जो दारू पीने का जो पात्र था, मटका था, वो उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पर प्रहार कर दिया। और जैसे ही लगा नित्यानंद प्रभु को अपने सर पर तो वहां से खून आने लगा। उस समय जगाई को बड़ा अफसोस हुआ और जगाई ने कहा, अरे रे रे, मधाई ने कहा, अरे जगाई तुमने क्या कर दिया, ये तो सन्यासी है, बेचारे इनको मारकर हमें क्या मिलने वाला है, इतना क्रूर मत बनो तुम। लेकिन तब तक वहां के उपस्थित लोग भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, उनको बताया कि देखो क्या हो गया है, ये जो जगाई मधाई हैं, इन्होंने आक्रमण कर दिया है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, उनके सर से खून बह रहा है। तो तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए, तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और जब देखा इन दोनों को तो आग बबूले होकर लाल लाल आंखों से उन्होंने कहा सुदर्शन, और अपने उंगली में सुदर्शन का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन काटने ही वाले थे कि नित्यानंद प्रभु उनके पैर पड़ने लगे, कहने लगे कि अरे प्रभु, आपका अवतार इस कलयुग में इनका शरीर पतित लोगों का शरीर का वध करना नहीं है, उनके भीतर हृदय में जो राक्षस है उनका वध करना है। अगर इन दोनों का वध करेंगे आप तो सबका वध करना पड़ेगा पृथ्वी लोक के ऊपर, किस किस को मारेंगे आप, किसको छोड़ेंगे, और वैसे भी इनका क्या कसूर है, देखो ये जो मधाई जगाई है इसने मुझे बचाया, और गलती से मधाई के जो हाथ में जो मटका था वो मेरे सर में लग गया। तो जब महाप्रभु ने सुना कि जगाई की वजह से नित्यानंद प्रभु बच गए हैं और जगाई ने मधाई को रोक दिया था तो उनको बड़ा आनंद हुआ। जगाई का से उन्होंने आलिंगन किया और कहने लगे कि इसी क्षण मैं तुम्हें श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनाऊंगा, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की इसलिए मैं तुम्हारा हो गया हूं। और आलिंगन करने के तुरंत बाद प्रेमावेश में आकर जगाई बेहोश हो पड़े, उस स्पर्श मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और सारे अष्ट सात्विक विकार जगाई में आने लगे। फिर से महाप्रभु ने आलिंगन किया, फिर से वही हुआ। उस समय मधाई ये दृश्य देख रहा था। वैसे जगाई और मधाई एक थे प्राय, पाप पुण्य जो भी करते थे साथ में ही करते थे। तो मधाई ने कहा, मधाई को बहुत पश्चाताप हुआ, कहने लगे अरे प्रभु, हम दोनों ने पाप किए थे तो अब कृपा अकेले उसके ऊपर क्यों, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया था इसलिए तुम्हारे ऊपर मैं कभी कृपा नहीं दे सकता। तो मधाई ने कहा कि आप तो सबसे बड़े कृपालु हैं, आपके पहले अवतार जो हुए हैं कितने सारे असुरों ने आपके ऊपर तीर चलाए अस्त्र चलाए लेकिन आपने उनको मुक्त कर दिया, उनका उद्धार कर दिया, लेकिन मैं हूं, मैं आपके शरण में आया हूं, अभी मेरा उद्धार करना चाहिए। नहीं, तुमने वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो मेरे लिए क्या उपाय है प्रभु, उपाय एक ही है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा जब प्राप्त होगी, वो क्षमा जब करेंगे तुम्हें, तब तुम्हारे लिए कोई मार्ग निकलेगा। तो नित्यानंद प्रभु से उन्होंने कहा, अरे नित्यानंद देखो ये मधाई जो है क्षमा याचना कर रहा है, तो क्यों तुम उसे माफ नहीं कर देते। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, प्रभु मेरा जो भी पुण्य है आज तक इतने जन्मों में मैंने जो पुण्य किया है मैं इस मधाई के हवाले कर देता हूं, ये तो आपकी माया शक्ति है, ये सब चल रहा है, ये सब लीलाएं हैं आपकी, मैं और क्या कह सकता हूं। इस तरह से नित्यानंद ने मधाई का आलिंगन किया और उस समय चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मधाई, नित्याय की कृपा अब तुम्हें प्राप्त हो गई है इसलिए तुम्हारा जीवन अभी सफल हो गया है। और इस तरह से मधाई भी शुद्ध भक्त बन गया और धीरे धीरे से सारे गांव में खबर फैल गई कि जगाई और मधाई जो सबसे बड़े दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति थे आज भगवान के शुद्ध भक्त बन गए हैं। और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है, और सोचने लगे कि ये जो निमाय पंडित व्यक्ति है, ये नित्यानंद हरिदास, ये कोई साधारण लोग नहीं है, किस तरह से ऐसा परिवर्तन लोगों में ला सकते हैं, तो ये निमाय पंडित तो जरूर भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। तो इस तरह से जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान में ले गए और वहां पर आकर साक्षात सरस्वती देवी ने जगाई और मधाई के जिह्वा के ऊपर वास लिया और सुंदर सुंदर स्तुतियां बोलने लगे जगाई और मधाई, और इन स्तुतियों को सुनकर सारे वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर असीम कृपा बरसाई और जब सारे भक्तों ने देखा कि किस तरह से ये सारे भक्ति के विकार सब प्रकट हो रहे हैं इनके शरीर में, तो हरी हरी कह के बड़े आनंद से वो पुकारने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसा दी है, लेकिन शर्त है कि आज से तुम पाप नहीं करोगे। करोड़ों करोड़ों जन्मों के तुम्हारे पाप मैंने स्वीकार कर लिए हैं। और इस बात का प्रमाण देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर दिखाया, और उनका शरीर जो कि बहुत सुंदर स्वर्ण रंग का था, पिघले हुए सोने का रंग था, वो अचानक काला बन गया, कोयले जैसा काला। क्यों? क्योंकि जगाई मधाई के इतने सारे पाप उन्होंने स्वीकार कर लिए थे, उनका सारा शरीर काला हो गया। उससे वैष्णव देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, महाप्रभु की इतनी कृपा कि सारे इनका पाप स्वीकार कर लिया है। इस तरह से सारे भक्तों ने बगाई और मधाई का गुणगान, मुलाकात नित्यानंद प्रभु से हुई तो मधाई ने भी नित्यानंद प्रभु के सामने आकर सुंदर स्तुतियां बोलना आरंभ किया, और अंत में एक प्रार्थना सामने रखी नित्यानंद प्रभु की। कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपके प्रति जो अपराध किया है, मैं कभी भी उसको भूल नहीं सकता हूं। दिन रात मुझे ये बात सताती है कि मैंने आपके ऊपर हमला किया, आक्रमण किया, और हालांकि मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया है, लेकिन ये बात मुझे बहुत चुभती है, मैं क्या करूं। तो नित्यानंद प्रभु ने आलिंगन किया और कहा कि आज से तुम और सुखी हो जाओगे, तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं होगा। और मधाई बिल्कुल सुखी बन गए। और उन्होंने कहा, और एक बात है, वो ये है कि आपके अलावा मैंने न जाने कितने लोगों के प्रति पाप किए हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। और थोड़े लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन इतने हजारों की संख्या में लोगों को मैं नहीं जानता। जिनको मैं जानता हूं, जाकर उनसे मैं क्षमा याचना कर सकता हूं, लेकिन जिनको जिनका स्मरण मुझे नहीं है और जिनके प्रति मैंने अपराध किया था, अभी उनके बारे में क्या कर सकता हूं मैं, क्या उपाय है मेरे लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, ठीक है, मैंने वचन लिया था पहले कि तुम दोनों का उद्धार करना है मुझे। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति को अगर तुम्हारा छांव भी स्पर्श करता था तो वो कपड़ों सहित जाकर गंगा जी में स्नान करता था अपने शुद्धिकरण के लिए। तो मैंने वचन लिया था कि एक ऐसे अवस्था में तुम दोनों को मैं रख दूंगा जबकि तुम्हारे दर्शन मात्र से ही लोगों को गंगा जल में स्नान करने से अधिक लाभ मिल जाएगा, इसलिए तुम गंगा जी की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। गंगा जी के भीतर जाने के लिए जो घाट हैं, उनको साफ कर दो, उनको अच्छी तरह से अलंकृत कर दो और अच्छे घाट बनाओ, ताकि जो वहां भक्त होते हैं, जिनको स्नान करना है, गंगा जी की उपासना करनी है, उनके लिए सुविधाजनक हो। तो उसके बाद में मधाई और जगाई भी दोनों आकर हर रोज सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करते थे, 200,000 कृष्ण का नाम जाप करते थे रोज, और फिर गंगा जी के तट पे खड़े होकर घाट के ऊपर रोज साफ करते थे और भक्तों की सेवा करते थे, और फूट फूट कर रोते थे, सारे भक्तों की कृपा याचना करते थे कि हमने आपके प्रति कितना अपराध किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। और इनकी ये दशा देखकर सारे भक्तों का हृदय पिघल जाता और वो भी रोना शुरू कर देते, और ये चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर और महाप्रभु ने क्या चमत्कार कर डाला है, ऐसे दुराचारी लोगों को ऐसे बना डाला है। और उसके बाद नया घाट भी तैयार किया उन्होंने, और ऐसे सेवा करते रहे दिन रात। और इस तरह से जगाई और मधाई ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होकर वास्तव में अंत में फिर चले गए भगवान के धाम में। आज भी मधाई के घाट के थोड़े अंश दिखाई पड़ते हैं, मधाईर घाट इसका नाम है, नवद्वीप में दिखाई पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये आज भी दिखाई पड़ता है। वास्तव में जगाई और मधाई थे कौन? भगवान के धाम में थे वो द्वारपाल, जय और विजय। वो कथा आप सबको मालूम होगी कि चार कुमार जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने ये जय और विजय को शाप दिया, क्योंकि जय और विजय ने उनको अंदर जाने के लिए मना कर दिया। और उस समय ये जय और विजय ने पृथ्वी लोक पे आकर असुर कुल में जन्म लिया। पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र का। तो वैसे तो उनको तीन जन्म लेना था, फिर ये चौथा जन्म कहां से आ गया? बताया जाता है कि जिस तरह से कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक खास उद्देश्य को की पूर्ति के लिए आए हैं, और सारे देवी देवता भी चाहते थे कि हम भी इस आंदोलन में शामिल हों, ये जो कृपा बरसाने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम आए हैं, ये कृपा आज तक उन्होंने नहीं बरसाई है, और ये कृपा को स्वीकार करने के लिए हमें अवश्य नीचे जाकर अवतार लेना है। तो इसलिए स्वयं महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में आए, और वही हरिदास ठाकुर जो कि नित्यानंद प्रभु के साथ में बाहर जाके प्रचार करते थे, वो किनके अवतार थे? ब्रह्मा जी के। खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे यहां चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, तो ऐसे कई देवतागण भी आए, थोड़े दृश्य रूप में, कोई अदृश्य रूप में। तो उधर ये जगाई और मधाई ने सोचा, ये जय और विजय ने सोचा, हमें तो वैकुंठ जाना है, लेकिन वैकुंठ में तो केवल वैकुंठ रस प्राप्त होता है, यहां जो रस का वितरण इतने विस्तारित रूप से कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उसको उसकी भी थोड़े दो बूंद हमें चाहिए। इसलिए वो खास ये इनका विशेष चौथा अवतार हुआ जय विजय का, और ये जगाई और मधाई के रूप में आए। तो इस लीला से नित्यानंद प्रभु की कृपा हम समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अंत में भक्तों को बताया, इन दोनों का उद्धार हुआ केवल नित्यानंद के इच्छा से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि उनको शुद्ध बनाना है, मैं बाध्य हो गया मेरी कृपा देने के लिए। तो उसी तरह से हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी, तो हमें भी नित्यानंद प्रभु की उपासना करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी, उनके चरण कमलों को पकड़ के रखना होगा। जो व्यक्ति इस संसार में बड़ा दुखी है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुखी है संसार में, है ना, सभी लोग दुखी हैं। तो जो अपने दुख से राहत चाहते हैं हमेशा के लिए, उन्हें नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए जो भजन हमने प्रवचन के पहले गाया था, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जय छाया जगत जुड़ाए। जिस तरह से एक प्रवासी धूप से जाकर जब किसी छाया में आश्रय लेता है तो उसे कितना आराम लगता है, उसी तरह से जो व्यक्ति इस संसार के दुख से, इस दावल नल से पीड़ित हैं, जब वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करते हैं तो उनको कितना आराम मिल जाता है, दिव्य सुख की प्राप्ति हो जाती है। हे नो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाए, दृढ़ कोरी धरो निताय रपाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि राधा कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु को नहीं, कृपा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं, उगम स्थान हैं। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना है तो आध्यात्मिक शक्ति आवश्यक है, और आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो बलराम जी की कृपा चाहिए, और बलराम जी तो खुद नित्यानंद प्रभु हैं। बल और राम, बल का मतलब ये नहीं कि कोई हट्टा खट्टा शरीर से रहे, ये आध्यात्मिक बल की बात हो रही है, और इसलिए वो आदि गुरु कहलाते हैं। तो जो गुरु होते हैं या जिनसे हम कृष्ण भक्ति के बारे में शिक्षा उपदेश प्राप्त करते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि कहलाते हैं। इसलिए जब हम वैष्णवों की गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करते, उनकी सेवा करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। जे संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गैलोतार, से पशु बड़ा दुराचार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस जीवन में नरोत्तम नित्यानंद प्रभु के साथ अपने संबंध की स्थापना नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ गया और वो तो बड़ा पशु है, दुराचार है, जिसने बलराम जी के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध की स्थापना नहीं की। नीता ना बोली ले मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करी बता। जिसने नित्यानंद प्रभु का, बलराम जी का, कृष्ण भगवान का नाम का उच्चारण नहीं किया, तो वो ऐसे ही सोचता है कि संसार कितना सुखी जगह है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपना शिक्षण, अपना धन, ये किस काम का, क्या लाभ है इन सब चीजों का। अहंकार मत्त होइया, निताय पद पर पसरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। तो जो लोग नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, इनका वर्णन है, असत्य को सत्य मानने वाले लोग हैं और सत्य को असत्य मानने वाले हैं ये। और इसलिए अहंकार से मत्त होकर भगवान को ठुकराते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा को ठुकराते हैं। निताय रे करुणा होबे, ब्रजे राधा कृष्ण पाबे, धरो निताय चरण दुई खानी। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो वृंदावन प्राप्त होगा, राधा कृष्ण प्राप्त होंगे। आज सुबह हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लीला सुन रहे थे, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार, उनकी कृपा के अनुसार उनको वृंदावन में राधा कृष्ण प्राप्त हो गए। तो ये प्रमाण है, निताय चरण सत्य तहार सेवक नित्य, निताय पद सदा कौरवाश। यही एकमात्र सत्य है जीवन में, संसार के सुख इत्यादि ये सब मिथ्या है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने का ही हमें प्रयास करना चाहिए। ये नरोत्तम दास ठाकुर का हम सबके लिए आदेश है। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे करो सुखी, राखो रांगा चरणे रपाश। नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य हैं, अपने आप को दुखी कहला रहे हैं, लेकिन वो दुखी नहीं है, है बड़े सुखी, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है वो। देखिए ऐसे परिस्थिति है, जो वास्तव में सुखी है अपने आप को दुखी समझते हैं, और जो वास्तव में दुखी है अपने आप को बड़ा सुखी समझते हैं। अजीब परिस्थिति है देखिए संसार में। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे ही कहते हैं, हम दुखी इसलिए हैं कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि शुद्ध भक्त हम कभी यह नहीं कहता कि मुझे भगवान मिल गए, हमेशा भगवान से विरह की भावना महसूस करते हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा दुखी ही समझते हैं। लेकिन ये भक्ति का दुख जो है सचमुच सबसे ऊंचा आनंद है, सुख है। ये सूक्ष्म बातें हैं, रहस्य है भक्ति का। तो धीरे धीरे से इन चीजों को हमें सीखने का प्रयास करना है। तो ये है नित्यानंद प्रभु की महिमा। जो नित्यानंद प्रभु को प्राप्त कर लेता है उसे कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने का मौका मिल जाता है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। जिस कृपा को चैतन्य महाप्रभु यहां देने के लिए आए, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिल सकता है। इसलिए बारंबार आचार्य बताते हैं, निताय गौर, जो गौर निताय नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के नामों का उच्चारण करते हैं उनका उद्धार हो जाता है। जगन्नाथपुरी में और अन्य कई स्थानों में ऐसे कई संस्थाएं हैं जहां पर कोई काल्पनिक मंत्रों का उच्चारण वो करते हैं, जैसे भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये मंत्र का जाप कोई आश्रमों में करते हैं, ये काल्पनिक मंत्र है, अलग अलग मंत्रों का मिश्रण करके उन्होंने नया मंत्र बनाया है। तो हमारी संप्रदाय में ऐसे मंत्रों को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया ये मंत्र। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हालांकि ये अपसंप्रदाय है, ये गलत है, फिर भी ये लोग गौर निताय का नाम तो ले सकते हैं और ले रहे हैं, इसलिए भले इस जीवन में शुद्ध भक्ति न हो, लेकिन निताय का नाम लेने के बल से आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं न कहीं उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी, ये गौर निताय की मूर्तियां सब हर एक घर में होना चाहिए, ये इनकी इच्छा थी। यहां तक कि प्रभुपाद जी ने एक बार उनके एक शिष्य को बताया था कि तुम गौर निताय की पुतलियां बनाकर डॉल ये जगह जगह में ले जाओ, उनको बांटो। मूर्तियां नहीं, पुतलियां, छोटी सी डॉल जिसे बच्चे खेलते हैं, क्योंकि गौर निताय के प्रति कोई अपराध नहीं होता है, अपराध स्वीकार नहीं करते हैं, वो इतने कृपालु हैं। लोग गौर निताय को भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनको आप बताइए कि ये पुतले हैं, डॉल हैं, खिलौने हैं तो ले लेंगे। तो इस तरह से उनको बहकावे में डालकर उनको निताय की कृपा पहुंचानी है उन तक। तो देखिए कितने कृपालु हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, और साक्षात यहां मूर्ति रूप में विराजमान हैं। बड़े कार्यशील हैं ये, कुछ ना कुछ करते रहते हैं भक्तों के जीवन में भी, सब जगह सब समय कृपा बरसाते रहते हैं भक्तों के ऊपर। ऐसे कई घटनाएं हुई, जैसे गौरीदास पंडित थे, अंबिका कालना नाम के गांव में रहते थे, और एक बार कीर्तन के समय क्या हुआ, उन्होंने गौरनिता की मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित की थी। कीर्तन इतना धुआंधार हुआ, इतने भावावेश में आ गए सारे भक्त लोग, कि गौर निताय जो कि मूर्ति रूप में सिंहासन पर थे, वो सिंहासन से कूदकर नीचे भक्तों के बीच में आ गए। तो गौरीदास पंडित को आश्चर्य हुआ, अरे आप तो मूर्ति हो, आप कैसे आ गए इधर, आपको तो वापस जाना है सिंहासन के ऊपर, आपकी पूजा हम कैसे करेंगे, आप ऐसे आकर नीचे भक्तों के बीच में नाचने लगे तो फिर हम भोग किसको चढ़ाएंगे, क्या होगा। तो लाठी लेकर उनके पीछे भागे, तो घबराकर गौर निताय दोनों जाकर फिर से सिंहासन पर बैठ गए। अपने भक्त के प्रति भीति होती है भगवान को, अपने भक्त की बातें हमेशा मानते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि आज से बिल्कुल यहां से भागना नहीं है, तो जैसे कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में करते हैं, वो पर्दा बार बार बंद करते थे, थोड़े समय के लिए खोलते थे फिर से जल्दी से बंद करते थे, ताकि उनको भक्तों का संकीर्तन न दिखाई पड़े ज्यादा। जब भी भक्त लोग आते थे तो पुजारी जल्दी से जाके थोड़ा बंद कर देता था, क्योंकि उनको मालूम है कि गौर निताय संकीर्तन बहुत पसंद करते हैं, कहीं वो छलांग मार के फिर से चले न जाएं। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां संकीर्तन के लिए आए थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला के समय ही ये लीला हुई थी, तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे तो गौरीदास पंडित ने कहा कि हे प्रभु, कि आप और थोड़े दिन यहां पर रहिए, मेरा जी नहीं भरा है अभी तक, यहां और संकीर्तन कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना ही होगा, और वैसे भी तुम जानते हो कि मेरे मूर्ति रूप में मुझ में कोई अंतर नहीं है, और मैं मूर्ति रूप में मैं और निताय यहां पे उपस्थित हैं तुम्हारे मंदिर में। गौरीदास पंडित बड़े चालाक, भगवान के भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं, भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान। तो गौरीदास पंडित ने कहा, अगर आप में और आपके मूर्ति में कोई अंतर नहीं है तो आपकी मूर्ति को जाने दीजिए, आप रहिए। तो भगवान हार गए, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु हार मान गए। तो अब क्या जवाब दिया जाए, तो कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो मूर्ति गौर निताय की नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु उठकर भक्तों के संग वापस अंबिका कालना से चले गए, और जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आकर बैठ गए सिंहासन पर, मूर्ति बन गए, यूं खड़े हो गए। तो इस तरह से कई लीलाएं हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि गौर निताय की कृपा अपने मूर्ति रूप में भी कितनी विशाल होती है। तो हमें भी गौर निताय की कृपा की याचना आज करनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें आध्यात्मिक बल मिलेगा, जिससे कि हम इस विषय भोग से परे हो सकते हैं, संसार के माया को दूर रखने के लिए हमें हमारे अंदर शक्ति हो सकती है। तो हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना कर सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस महोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। एक और लीला सुनाते हैं, बड़ी मजेदार लीला है। मजेदार लीला सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ये भी चोरों के बारे में ही है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को ऐसे ही लोग मिलते थे, ऐसे लोगों का ही उद्धार उन्होंने किया है। तो एक बार ऐसे हुआ कि नवद्वीप, जो कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की स्थली है, वहां पर नित्यानंद प्रभु आ पहुंचे। ये उस समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे और जगन्नाथपुरी में थे। तो वो आए और सची माता के घर में गए। सची माता जो कि जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु की माता जी हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई नित्यानंद प्रभु को देखकर। कहने लगे कि निताय, मैं तुम्हारे लिए बहुत दिन से अपेक्षा प्रतीक्षा कर रही थी, अब यहां थोड़ा बहुत रहो नवद्वीप में ताकि मैं तुम्हें देख सकूं बार बार। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं इसी हेतु यहां आया हूं, यहां पे रहूंगा और आपको रोज मिलता रहूंगा। और उस समय नित्यानंद प्रभु ने वहां हरिनाम संकीर्तन आरंभ किया गली गली में। फिर से थे तो सन्यासी नित्यानंद प्रभु, लेकिन उनका वेश कैसे था? वो सुंदर रेशम के कपड़े पहनते थे, उनके कानों में सोने के कुंडल, गले में सुंदर सुंदर मोतियों के हार, सोने के हार, और उनके गले में लटकते हुए सुंदर सुगंधित फूलों की वनमालाएं, और शरीर पे चंदन का लेप, और नाना प्रकार के सोने के कंकण और अलग अलग तरह के आभूषण, कीमती कीमती महंगे। और कई लोग निंदा करते कि अरे ये कैसे अवधूत हैं, सन्यासी लेकिन कैसे कपड़े पहन रहे हैं। अवधूत के लिए कोई सीमा नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे वेश पहनकर अपने भक्तों के संग में नाम संकीर्तन किया करते थे नदिया के गांव गली गली में। तो एक बार ऐसे हुआ कि उनके एक भक्त थे जिनका नाम था हिरण्यदास। हिरण्यदास का घर नवद्वीप के बाहरी इलाके में था, सुनसान जगह थी, वहां दूसरा कोई घर नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु वहां जाकर रहते थे। तो एक बार वहां एक चोर था, वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उसने, जैसे कि जगाई मधाई ने भी लिया था, लेकिन था एक नंबर का डाकू और चोर। और उसने सोचा, अपने साथियों को बुलाकर कहने लगा, ये जो निताय महाशय है, लोग इनको गोस्वामी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, अवधूत है ये, इसके शरीर पर तो देखो कितने कीमती कीमती गहने आभूषण है, अगर चंडी देवी की कृपा से हमें ये सब प्राप्त हो गए तो हमारा तो जीवन बन जाएगा, फिर और कभी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, जीवन भर हम सुखी रह सकते हैं। ये ब्राह्मण, तथा कथित ब्राह्मण जो डाकू बन गया था, वो भी जगाई मधाई की तरह था, ऐसे कोई पाप शायद उसने नहीं किया होगा, चोरी करता था, डकैती, लोगों का खून सब कुछ करता था केवल थोड़े बहुत पैसे के लिए। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम ये हिरण्य दास के घर में डाका डालेंगे, क्योंकि ये सुनसान जगह में है, कोई लोग रहते नहीं है यहां पर। तो क्या किया उन्होंने, एक बार सब लोग धीरे से अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहां पे बाहर मौजूद हो गए, और एक आदमी को आगे भेजा, जाके देखो खिड़की से अंदर क्या चल रहा है। तब उस डाकू ने अंदर देखा तो क्या देखा कि नित्यानंद प्रभु प्रसाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और उनके जो भक्त हैं कीर्तन में मस्त हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा डाकुओं ने कि ठीक है, ये कीर्तन को समाप्त होने दो, ये गोस्वामी जी इनका भोजन समाप्त होने दो, जब ये सो जाएंगे तब हम लोग आक्रमण करेंगे और इनके गहने सब चोरी कर लेंगे। तो प्रतीक्षा करने लगे, बैठे अंधेरे में बाहर, कोई देख नहीं सकता था उनको, और बैठे तो नित्यानंद प्रभु को तो समझ गया, वो तो आखिर हैं बलराम जी, भगवान ही हैं, अंतर्यामी हैं, तो उनको पता चला कि ये किस इच्छा से ब्राह्मण आया है, हालांकि अपने आंखों से इधर नहीं देख सकते थे लेकिन उनको पता चला। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, उनकी योग माया शक्ति का प्रयोग किया, और जैसे ही ये डाकू उधर बैठे थे तो निद्रा देवी उनके हृदय में प्रवेश कर ली, और उनको ऐसी गहरी नींद आई कि उनको कुछ पता ही नहीं चला, और ठीक सुबह ही उनको उनका जागरण हो गया। सुबह उठकर देखते हैं कि ये तो अंधकार को क्या हो गया, दिवस हो गया, अरे क्या हो गया हमें, जल्दी जल्दी से उठकर वहां से भाग पड़े, जंगल में अपना जो अस्त्र शस्त्र है वो सब छुपा दिए, और आपस में आकर एक मीटिंग करने लगे, ये क्या हो गया, कैसे हमें नींद आ गई। तो उस समय से आपस में सब लोग झगड़ने लगे, ये तुम पहले सो गए इसलिए हम भी सो गए, दूसरा कहने, नहीं 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 तुम सोए पहले, तुमको देखकर हम सो गए,
और थोड़े कहते थे कि देखो मैं उनके सोने का कंकण लूंगा, दूसरा कहने लगा मैं सोने का कुंडल ले लूंगा, तीसरा कहने लगा मैं चांदी का नूपुर ले लूंगा। ऐसे अपने स्वप्न बनाकर स्वप्न की दुनिया में ही सब रहने लगे, तो आपस में झगड़ने लगे। तो ऐसे झगड़ने लगे तो ये जो उनका लीडर था, नेता था, तथा कथित ब्राह्मण, उसने कहा अरे अरे झगड़ा छोड़ो, अभी हम असफल इसलिए हुए हैं कि हमने चंडी देवी की पूजा नहीं की जाने के पहले। तो इस बार आज रात को जब हम जाएंगे तो अच्छी तरह से चंडी को मांस से और मदिरा से हम संतुष्ट करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने शानदार चंडी पूजा का आयोजन किया और उनको मांस मदिरा इत्यादि अर्पण किया जैसे तमोगुणी लोग करते हैं। ये ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी ऐसे सब तमोगुण की पूजा करते थे। तो उसके बाद में अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके नित्यानंद प्रभु के निवास स्थान के पास में आए। उनके हृदय में स्वप्न और भी तीव्र होते जा रहे थे कि मेरे पास कितने सोना होगा, कितना चांदी होगा। और जैसे आए तो अचानक दूर से देखते हैं अद्भुत दृश्य, वहां उस छोटे से घर को घेर कर कई लोग थे, अद्भुत लोग, बड़े बड़े पहाड़ जैसे शक्तिशाली लोग, हाथों में उनके गदा और तलवार और अस्त्र शस्त्र थे और ऐसे लग रहा था कि मानो ये मतवाली हाथी हैं और ऐसे चल रहे थे। और वो डाकू ने सोचा जो उनका नेता था कि ये एक आदमी हम 100 लोगों को खत्म कर सकता है, तो यहां से अभी निकलना ही हमारे लिए उचित है। तो आपस में सोचने लगे कि ये कौन है। तो एक डाकू कहने लगा कि शायद नित्यानंद प्रभु को हमारी योजना पता चल गया होगा, इसलिए उसने ये जो चौकीदार रखे हैं अपने घर के पास में। तो दूसरे ने कहा नहीं, ये कोई साधारण चौकीदार थोड़ी है, देखो तो कैसे चट्टान पहाड़ की तरह है ये लोग। तो तीसरा कहने लगा हो सकता है कि नित्यानंद प्रभु के पास कोई अमीर व्यक्ति आया हो और रात को यहां पर ठहरा हो, तो उसने अपने साथ में अपनी रक्षा के लिए ये सब लोग लाए होंगे, अपने पास धन था तो ऐसे विशाल चौकीदारों को लाया होगा। तो फिर भी ठीक है, अभी थोड़े दिन हम इस बात को रहने देते हैं, जब ये लोग चले जाएंगे एक 10 दिन के बाद में फिर हम आएंगे। तो फिर से वो लौट कर चले गए और ये 10 दिन में सब हर रोज दिन रात सपने देखते रहते थे कि कल हमारा क्या होगा, जब सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, हीरे मोती मिलेंगे, क्या होगा। 10 दिन के बाद उन्होंने सोचा, फिर से चंडी की पूजा अच्छी तरह से की, मांस मदिरा अर्पण किया, फिर से आ गए धीरे धीरे से। और उस दिन किस्मत थी अमावस्या की रात थी, अंधकार, बिल्कुल अंधकार, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक कदम आगे भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, बादल भी थे आकाश में। और जब वो घर के पास में आए तो अचानक क्या हुआ, अचानक सारे डाकू अंधे हो गए। और जब अंधे हो गए तो हरेक डाकू को ऐसा धक्का पड़ गया हृदय में कि अरे मैं अंधा हो गया। स्वाभाविक है ना, अगर अचानक कोई आदमी अंधा हो जाता है तो उसको तो शॉक तो हो ही जाएगा ना हृदय में। तो उनको ऐसे लगा मानो कि हृदय का दौरा पड़ गया हो कि क्या हो गया, हम अंधे हो गए, क्या हो गया, कहां हैं हम। तो कोई अंधेरे में ऐसे यूं चल रहे थे और एक आदमी वहां गड्ढे में गिर गए, जहां पे लोग खाने के बाद हाथ धोते हैं, वो जो जल गिरा होता वो जल में जाके गिर पड़ा। दूसरा आदमी एक जगह गिर पड़ा और वहां पे उसे मच्छर और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े सब काटने लगे। तो तीसरा आदमी था वो कहीं एक और गड्ढे में गिर गया जिसमें बहुत हजारों हजारों कांटे थे, तो वो कांटों के बीच में गिर गया बेचारे, सब जगह कांटे 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 चुप गए और वहीं पर लेट गया वो। चौथा व्यक्ति डाकू किसी और जगह गिर पड़ा और वहां पे बिच्छू और खटमल इत्यादि हजारों की संख्या में आके काटने लगे उनको। और इतना भी काफी नहीं था, इंद्रदेव को क्रोध आया कि इन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण करने की इच्छा रखी है। तो ऐसे मूसलधार वर्षा हो गई, उसमें बर्फ के टुकड़े, तूफान, हवा, ठंडी ठंडी हवा, इनकी तो बेचारों की बुरी हालत हो गई। चिल्ला नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, और ऐसे ऐसा उनको दर्द महसूस हुआ, इतने दुखी हो गए, उनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक उस डाकुओं के नेता को मन में एक विचार आया, ये शायद ये जो गोस्वामी हैं, ये आज साधारण आदमी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है जैसा कि लोग बोलते हैं, नहीं तो ऐसा क्यों होगा। आज जो हमारी परिस्थिति है ये इनकी माया शक्ति की वजह से हुआ है। पहली बार जब हम आए तो इनकी माया शक्ति से हम सब सो गए, ये कोई साधारण बात नहीं थी, कभी भी पहले हम ऐसे सो नहीं गए थे डाका डालते समय। और दूसरी बात, ये जो विशाल पहाड़ के समान चौकीदार थे, ये तो शायद विष्णु दूत हुए होंगे, और कौन हो सकता है। और अभी ये परिस्थिति, ये भी उनकी ही शक्ति है। अभी मुझे ये नित्यानंद गोस्वामी के शरण में जाना चाहिए, मैंने बहुत बहुत गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसे तीव्र भावना से उनको पश्चाताप हुआ। और अपने मन ही मन में उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया। इस तरह से हर एक डाकू के मन में वही भावना आई, और तुरंत जिस परिस्थिति में वो थे वो ठीक हो गया, अपने अपने जगह से सब उठे, और अगले दिन भागकर ये डाकुओं का नेता नित्यानंद प्रभु के पास आया और छलांग लगाकर उनके चरण कमलों पे दंडवत किया और कहा कि नित्यानंद प्रभु हमें कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए, हमारी बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे क्या बात है, तुम तो अच्छे ब्राह्मण कुल के आदमी हो, तुमने क्या बड़े पाप किया है, क्या बड़ा पाप किया है। तो उसने बताया, हमने आपके आभूषणों को चोरी करने हेतु इतने सारे योजना बनाए, हम सब अस्त्र शस्त्र लेकर आए, पहले दिन आपने हमें सुला डाला, दूसरे दिन आपने ये सब बड़े बड़े चौकीदारों को रखकर हमें भगा डाला, और तीसरे दिन हमारी क्या अवस्था हुई थी आप खुद जानते हैं अच्छी तरह से, अब हमें पता चल गया है कि हम कितने बड़े अपराधी हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा और कहा कि तुम मेरे शरण में आए हो, मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हें अवश्य कृपा दूंगा और तुम्हें भगवान का शुद्ध भक्त बना दूंगा, लेकिन शर्त है कि आज से तुम पाप करना बंद कर दो। तो नित्यानंद प्रभु ने उस डाकू को आलिंगन किया, उसके सारे पाप चले गए और शुद्ध भक्ति के लक्षण उसके शरीर में आए, और कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह के वो कूदने लगा, उसके अंदर सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। और उस समय नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ, अभी सारे दुष्ट दुराचारी लोगों को, डाकुओं को, चोरों को, उनको जाके तुम प्रचार करो और उनको कृष्ण भक्त बनाओ। तो डाकू ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। और पहले तो अपने साथियों को सब कृष्ण भक्त बना दिया, और सब जगह जो भी डाकू लुटेरे थे उनके बीच में जाकर कृष्ण नाम का प्रचार किया और सबका उद्धार करा दिया, क्योंकि उसके अंदर निताई की कृपा आ गई थी, निताई की शक्ति थी। तो उसी तरह से ये संसार में आजकल के जमाने में सभी दुष्ट दुराचारी हैं, इसलिए अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हमारे हृदय में आ गई तो हम भी थोड़ा कुछ दो शब्द बोलकर उनका हृदय का परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के बिना, उनकी कृपा के बिना हम प्रचार नहीं कर सकते, दूसरों के हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं ला सकते हैं, उनके जो बुरी आदतें हैं उनसे छुटकारा उनको नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारे आचार के लिए, प्रचार के लिए, विचार के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
आई गौड़ा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौड़ा हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमः चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
भगवत की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर शिवासादि गौरव जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद बोलो जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चंद्र जय गौर भक्त वृंद নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ও নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গৌর হরে গৌরহরে জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন জয় সচিনন্দন গৌরহরে নিতাই 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 Tiny, 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 tiny.